तो देवता या अमर बनने का प्रयास होता है, असुरों का भी प्रयास होता है, लेकिन उनकी उनका विचार शरीर से सीमित होता है। अमर बनेंगे हम लोग, तो शरीर को अमर बनाएंगे, शरीर को बनाए रखेंगे। इसीलिए अभी हमारे साइंटिस्ट, उनका भी प्रस्ताव तो था, हम लोग मनुष्यों को इमॉर्टल बनाएंगे, मनुष्य को अमर बनाएंगे। ऐसे कहते कहते वो थक गए, अब थोड़ा नहीं कह रहे, लेकिन कुछ 30-40-50 वर्ष पूर्व ये मंत्र बोला जा रहा था, मनुष्य को हम क्या करेंगे, इमॉर्टल बनाएंगे, इमॉर्टल बनाएंगे, इमॉर्टल। इसी को प्रभुपाद कहते हैं, आप तो कह ही रहे हो, न तो बनाए हो न तो बना पाओगे, ये आपका पोस्ट डेट चेक होगा। एक तो आप बैंकक्रप्ट हो, आपके बैंक में कुछ डिपॉजिट्स वगैरह नहीं है, और आप ये घोषणा तो कर रहे हो मनुष्य को हम अमर बनाएंगे। ऐसे कईयों ने प्रयास किया है, हिरण्यकश्यप को भी प्रयत्न किया, और हिरण्याक्ष भी और रावण भी और सभी ने प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हुआ। अब तुम्हारी बारी, तुम शास्त्रज्ञ, शास्त्रों की बारी है, तुम वही बात बक रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन अमर तो भगवान के भक्त ही बन सकते हैं। और इसी शरीर को अगर अमर बनाएंगे तो क्या होगा, इसकी चार समय शायद तो है, ऐसे जन्म तो हो गया, उनका प्रयास है कि हम मरेंगे या नहीं, तो दो समस्या तो और भी बच गई, कौन सी है, बुढ़ापा और व्याधि तो है, वे तो कष्ट देंगे ही तुमको, बूढ़े होंगे तुम, बीमार होंगे तुम, और भी कई सारी परेशानियां है, कई सारी परेशानियां, और कभी 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 कुछ लोग तो सोचते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए एक पर्याय है, चलो मैं मर जाता हूं, आत्महत्या करता हूं, और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है, बस आई टेक माय लाइफ। लेकिन अगर शास्त्रज्ञ उनको अमर बनाते तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, कोई मरना चाहेगा, साइंटिस्ट उनको मरने भी नहीं देंगे, जीते रहो और दुख भोगते रहो, एक महिला थी अमेरिका में, पता एक पुल पर चढ़ी हुई थी और स्वयं को परेशान, बड़ी परेशान थी, तो आत्महत्या करने का उसने सारी योजना बना के एक ब्रिज के ऊपर आके खड़ी थी, और फिर वहां से छलांग मारने वाली थी। इतने में वहां की जो पुलिस है ना, अमेरिका की पुलिस बड़ी सावधान रहती है उनके, तो उतर रही थी कि धीरे धीरे उतर के वहां से उसको गिरना था, स्वयं को गिराना था, उतने में पुलिस आके उसको पकड़ लिया। पुलिस तो सोच रहे थे हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो महिला कहने नहीं, लेट मी डाई प्लीज, लेट मी डाई, मुझे मरने दो प्लीज, हेल्प मरने दो। तो लेकिन लोगों को अमर बनाएंगे, साइंटिस्ट अमर बनाएंगे, संसार तो दुखालयम रहेगा, अशाश्वतम रहेगा। तो वाह, क्या लाभ, क्या लाभ ऐसे अमर अमरता का, अमर होने का। कृष्ण भावना के कुछ क्षणों का जीवन ही जीवन है, वैसे कुछ क्षण का ही सही जीवन, कृष्ण भावना का जो जीवन है कुछ क्षणों का सही, कुछ दिनों का सही, कुछ वर्षों का सही, कृष्ण भावना का जीवन लाइफ वही जीवन है, नहीं तो वैसे मरण ही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, तरवहा किम न जीवंती, भस्त्रा किम न स्वसंत्युत, न खादंती न मेहंती, किम ग्रामे पशवो परे। सुखदेव गोस्वामी, ए अरे तुम्हारे गांव में तरवहा वृक्ष नहीं है क्या? कई सारे वृक्ष तो काफी लंबी आयु वाले वृक्ष है, तुम्हारे जन्म से पहले भी थे और तुम मरने के उपरांत भी वे रहेंगे, कुछ वृक्ष रहेंगे, तो क्या तरु लंबी आयु नहीं जीते क्या? और भस्त्रा किम न सुसंचिता, और जो धोंकनी होती, धोंकनी लोहार की धोंकनी, द बेलो ऑफ द ब्लैक स्मिथ, तो बहुत हवा अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है, सोनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास भी धोंकनी छोटी वाली हो गया, हैंड हाथ से ही सोने को तपाने के लिए तप्त कांचन धोंकनी का उपयोग करते हैं, और लोहार जो होते बड़ी धोंकनी होती है, तो बहुत हवा, धोंकनी में तो खूब हवा अंदर लेती है, उसका भी श्वास चलता ही रहता है, तो तुम तो बहुत कम हवा लेते हो, तो तुमको धोंकनी बनना है क्या? धोंकनी का जीवन क्या और श्रेयस्कर है, बढ़िया है, क्योंकि तो अधिक हवा अंदर लेती, अंदर लेती बाहर छोड़ती, श्वास है। भस्त्रा किम न सुसंचित, और वृक्ष लंबी आयु जीते हैं, तो केवल लंबी आयु जीना, ये केवल सांस लेते रहना, क्या यही जीवन है? फिर आगे वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, खादंती न मेहंती, किं ग्रामे पशवो परे, पशु भी तो है तुम्हारे गांव में, पशु भी तो है, और वो क्या करते, क्या वो खाते नहीं? तुम भी जीते हो जैसे, या जीना चाहते हो उसे लंबी आयु, वृक्ष जैसे लंबी आयु, तुम भी सांस लेना चाहते हो, धोंकनी भी तो सांस लेती है, खाना चाहते हो, खाने वाले तुम्हारे ग्राम में कई सारे हैं, पशु भी तो खाते हैं, मेहंती और स्त्री संग पुरुष संग तो पशु भी करते हैं, कुत्ते बिल्लियां भी तो करती है, ऐसा जीवन क्या ये जीवन है? केवल जीते रहना, लंबी आयु, वृक्ष जैसी लंबी आयु, ये प्रभुपाद वो वृक्ष की बात किया करते थे, कैलिफोर्निया में ऐसा ही वृक्ष है, 5000 साल पुराने वृक्ष, एक एक वृक्ष मतलब श्री कृष्ण के समय से, श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तब से कुछ वृक्ष तब उगे हुए, तब जन्मे हुए वृक्ष आज भी कैलिफोर्निया में है, बहुत ऊंचे और बहुत मोटे तगड़े, उनका तना जो होता है, द ट्रंक ऑफ द ट्री, इतना मोटा होता है, तो रास्ता जब बनाते हैं तो रास्ता वो तने के तने से ही तो सुरंग बनाते हैं, उसी में से कार आती है जाती है, वृक्ष इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, और कार आ रही जाती है, इतने बड़े तो लंबी आयु चाहते, तो वहां जन्म ले लो, कैलिफोर्निया में वृक्ष बनो, लंबी आयु चाहते हो, तो ये वहीं पर कहे सुखदेव गोस्वामी, बस कुछ क्षणों का सही लेकिन कृष्ण भावना का जीवन ही बेहतर है। और फिर कुछ क्षणों के लिए कृष्ण भावना का जीवन तुम जिए तो फिर सदा के लिए जीते रहोगे। बस एक ही बार शुद्ध नाम जब तुमसे हुआ, जस्ट वंस, केवल एक बार आपने अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा जप किया एक बार बस, तो जीवन सफल फिर हो गए, अमर हो गए। वैसे शरीर अमर होने नहीं देता, शरीर अमर होने नहीं देता, जब तक हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, जी के मर रहे हैं, किसके कारण? शरीर के कारण। वैसे शरीर ही नहीं रहेगा तो हम अमर हो गए, शरीर ही नहीं रहेगा तब अमर होंगे, नहीं तो वैसे कहां अमर। शरीर ही तो मरण का कारण शरीर है, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, इसीलिए लगता है कि हम लोग अमर नहीं है। तो शरीर को ही त्यागो और ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो, ऐसी भावना हो ताकि दोबारा शरीर की आवश्यकता ही नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः, ये अमर, ये अमरता का संदेश भगवद गीता का है। भगवान अमर बनो, कैसे अमर बनो? मैं अभी प्रकट हुआ, मेरे जन्म को, मेरी लीलाओं को समझो। जन्म कर्म च मै दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, हो गए आप अमर हो गए। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, शरीर समाप्त हुआ, आप अमर, आत्मा अमर है, आत्मा के रूप में आप जीते रहो। तो ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश भगवान गीता में देते हैं। तो भगवान भी तो चाहते कि हम सब अमर बने। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं, भय मत करो, किसी बात का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, जन्म का भय नहीं है। श्रद्धा से क्या करो? भगवान का नाम का कीर्तन करो इस कलयुग में। हरि नाम को प्राप्त होगा उनका जो जप करेंगे। हरि नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं होना ये नाम अपराध है। हरि नाम में श्रद्धा नहीं होना नाम अपराध है। और कहा है कि नाम नाम हाट, भक्ति विनोद ठाकुर की जो नाम हाट की योजना है, तो बाजार हाट में कोई वस्तु का मूल्य होता है, हम दुकान में जाओ तो ऐसे कोई वस्तु फ्री तो नहीं है। तो जो बाजार है, ये नाम हाट, इस नाम हाट में बस एक एक ही वस्तु का वितरण होता है, बिक्री के लिए रखी है, और वो कौन सी है? वो कौन है? हरि नाम। तो हरि नाम किनको मिलेगा? श्रद्धावान, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान। श्रद्धा का मूल्य जो चुकाएंगे, फ्री नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है नहीं मिलेगा नाम, श्रद्धा नहीं है तो नाम मिलेगा नहीं, श्रद्धा लेके आए हो, श्रद्धा से आए हो, श्रद्धालु हो, ले लो नाम लो। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम या फिर श्रद्धावाल लभते नामम, श्रद्धावान को ही नाम प्राप्त होगा या ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान तो जिसको जिसको श्रद्धा है नाम प्राप्त होगा। लेकिन फिर आगे गोद्रुम कल्प तभी में भक्ति विनोद ठाकुर समझाए हैं, ये जो श्रद्धा से प्रेम तक की बात है। श्रद्धा है तो नाम तो प्राप्त हुआ, लेकिन वे कहते हैं कि आप निष्ठा से जब नाम लोगे, निष्ठा से जब नाम लोगे आप, तो आपको जो नाम प्राप्त होगा रूपयुक्त नाम प्राप्त होगा। रूप मतलब वहां रूप का दर्शन वाला जो नाम में, नाम जो भगवान है और इस नाम में ही है भगवान का रूप, नाम में ही भगवान के है गुण, नाम में ही है भगवान की लीलाएं और नाम में ही है का भगवान का धाम, भगवान का प्रेम नाम से ही प्राप्त होगा। तो जो साधक निष्ठा से नाम लेंगे उनको ये रूपयुक्त रूप वाला रूप का दर्शन का प्रारंभ ये निष्ठा से लिए हुए नाम से होगा। और फिर वो भी कहते हैं कि यह तो निष्ठा से नाम लिया मतलब आपने दो आने दे दिए आपने। पहले आने चलते थे, 16 आने का एक रुपया होता था, 16 आने का एक रुपया और 4 आना 54 होती थी, 8 आने की 58 होती थी। हम जब थे पहले थे छोटे तो हमने 58 54 इसका उपयोग किया। तो जिसके पास श्रद्धा है मतलब उसके पास कुछ पैसे ही थे, पैसा दे श्रद्धा दी या श्रद्धा मूल्य चुकाया तो नाम प्राप्त हुआ। तो श्रद्धा मतलब आपके पास कुछ पैसे ही थे, एक आने का 4 पैसा होता था, 4 पैसे का एक आना। तो आपने आप निष्ठावान हो, निष्ठा से आपने जप किया तो आपने 2 आने दे दिए, आपको ये रूपयुक्त नाम प्राप्त होगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपने रुचि पूर्वक नाम जप किया, मतलब आपने 4 आने दे दिए। आप जो नाम प्राप्ति के लिए, नाम खरीदने के लिए, किन्वे खरीदने के लिए आप आए हो, तो आप रुचि का स्तर है मतलब आपके पास 4 आना है, तो आपको गुणयुक्त नाम प्राप्त होगा। गुणयुक्त मतलब भगवान के जो गुण है उसका भी साक्षात्कार होगा। ये जो नाम है स्वयं का साक्षात्कार कराएगा, पहले तो रूप का ही साक्षात्कार, आप केवल निष्ठावान हो रूप का साक्षात्कार। आप रुचि पूर्वक नाम ले रहे हो तो आपको गुण का साक्षात्कार, आप आसक्ति के साथ नाम ले रहे हो, आसक्ति दूसरा ऊंचा सोपान है, आसक्ति के साथ, तो फिर आपने 58 दे दी। आपके पास कितना पैसा है, आपने 8 आने दे दिए तो आपको ये रूपयुक्त गुणयुक्त अब क्या लीलायुक्त, आपको लीलायुक्त नाम लीलायुक्तना। और फिर अब आप भाव के साथ नाम ले रहे हो, भाव के साथ, भाव के साथ जो नाम लेता है, भाव के साथ, तो उसको क्या प्राप्त होगा? अभी क्या बचा है? गुण, एक तो एक रूप हुआ, गुण हुआ, लीला हुई, धाम को देखना होगा वहां क्या भक्त विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, धाम के है कि तो हुआ भाव के स्तर पर। तो उसने वैसे भाव के स्तर पर वैसे ही देखना होगा, एक नाम, एक रूपयुक्त, गुणयुक्त, लीलायुक्त। और फिर कहते कि आप कैसे भाव को कहें, भाव 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 के साथ आप नाम ले रहे हो, आपने एक रुपया दे दिया, आपने एक रुपया दे दिया सोलाना, तो हुआ फिर बहुत कुछ सब कुछ, लेकिन कुछ बचता है वैसे, लेकिन एक ये रुपया जो था ये चांदी का रुपया था, कहते भक्त विनोद ठाकुर। लेकिन आप जब एक रुपया और सोने का एक रुपया, गोल्डन कॉइन, एक रुपया गोल्डन सोने का हो वो दे दिया, तो फिर सारे जो रस है, सारे जो रस है, जो रसराज श्री कृष्ण है, रस विग्रह जो है, चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, तो नाम भी रस का विग्रह है, भगवान भी रस के विग्रह, रस की खान है, रस खान है भगवान, तो सारे ये जो अलग अलग रस या अलग अलग भाव, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सारे रस, रसाल भगवान का नाम रसाल, अखिल रसामृत सिंधु भगवान, अखिल रसामृत सिंधु जो भगवान, पूरे के पूरे भगवान, अहम प्रकाश सर्वशा योग माया समावृत भगवान का, मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबको दर्शन नहीं देता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि अहम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी शरण में आता है उतना ही मैं दर्शन देता हूं, उसको उसका साक्षात्कार उतनी ही मात्रा में कराता हूं। तो उसको प्रेम भी प्राप्त हुआ सोने का, उसने एक रुपया दे दिया, तो भक्ति विनोद ठाकुर साधकों के लिए ये समझाए हैं। जप की शुरुआत आप श्रद्धा से तो कर सकते हो, लेकिन फिर निष्ठा से जप, रुचि पूर्वक जप, आसक्ति पूर्वक जप, भाव पूर्वक जप, प्रेम पूर्वक जप, प्रेम पूर्वक जप, प्रेम के स्तर पर जिसने जप किया, पूरे भगवान रस रसखान भगवान, रस विग्रह भगवान प्राप्त होंगे। और फिर क्या होगा? फिर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, ये कुछ नहीं होगा। तो उसने ये भी किया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सब किया। क्या हुआ? प्रेम के स्तर पर या निष्ठा, फिर आसक्ति, रुचि आसक्ति भाव, प्रेम पूर्वक जिसने जप किया, कीर्तन किया, जप किया, तो उसने किया होगा कि नहीं, ये मनमना किया होगा पहले, बहुत मनमना, मेरा स्मरण करो भव मद भक्त बन गया, नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, उसने साष्टांग दंडवत दी, प्रणाम भी किया होगा और उठ के बैठ भी तो गया साष्टांग के बाद, तभी उसका प्रणाम चल ही रहा, क्योंकि विनम्र भाव से प्रणाम कर रहा है। प्रणादभि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही। तो जो व्यक्ति इस रुचि आसक्ति भाव के स्तर पर जो जप कर रहा है या वहां पहुंचा है, वहां जप करते करते उस स्तर पर सीढ़ी उस उपान पर पहुंचा है, तो उसने ये सब प्रणादभि सुनी चेन ऐसे मन की स्थिति में ही, ये नहीं किया उसका वो बच गया, ये तो सब कर लिया उसने, श्रद्धा पूर्वक किया, फिर निष्ठा पूर्वक जप किया, रुचि पूर्वक जप किया, भाव पूर्वक जप किया, लेकिन उसे त्रणाद भी सुनिश्चित नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरा कर लिया तभी तो वहां पहुंचा है, वो त्रणाद भी सुनिश्चित हुआ उसका। अमानिना मान देना, उसने सत्कार सम्मान किया और भक्तों का और जीवों का, तभी तो उस स्तर पर उसका जप हो रहा है। तो ऐसे भक्त को फिर भगवान कहे इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्यतमम 18वां अध्याय भगवान का, अब मैं अर्जुन तुमको गुह्यतम बात कहता हूं, कहिए कहिए। तो भगवान कहे थे मन मना भो मद भक्तो अध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसी सत्यम ते, भगवान कहे माम एव एष्यसी, मुझे ही तो प्राप्त होंगे। चार बार जब भगवान कहे मन मन भव मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, चार बार चार कार्य करने के लिए भगवान कहे और हर समय कहे, अपना नाम जोड़ दिए उसके साथ, स्मरण करना है मेरा स्मरण करो, भक्त बनना है मेरा भक्त बनो, पूजा अर्चना करनी मेरी पूजा अर्चना करो और नमस्कार मुझे नमस्कार करो, चार बार भगवान ने कहा। अगर भगवान नहीं कहते तो फिर नमस्कार तो फिर किसी को भी नमस्कार, जो भी चमत्कार दिखाता है नमस्कार करते हैं, नहीं मुझे नमस्कार करो। और वैसे मैं भी आई एम वंडरफुल कृष्णा, मेरे भी चमत्कार है, मेरी भी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं, इसको सुनोगे तो चमत्कार देखोगे तुम, यहाँ का ये बाबा का इसका उसने दिखाया चमत्कार, उसने दिखाया चमत्कार, वो कुछ भी नहीं, क्या चमत्कार। तो चार बार भगवान ने चार कृत्य, एक ही बार कहा चार कृत्य करने के लिए, करो ये करो, और हर वक्त कहा कि मुझे मुझे नमस्कार, मेरा भक्त मेरा स्मरण और क्या मेरी पूजा अर्चना। तो चार बार जब माम माम मत मत मन माम जो कहा, फिर दूसरे पंक्ति भगवान माम एव यशस्वी, हमारे आचार्यों ने पॉइंट आउट किया है, इसको स्मरण दिलाया है, चार बार भगवान जो माम 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 कहे, तो अब माम एव यशस्वी, यशस्वी मतलब प्राप्त करोगे, माम मुझे प्राप्त करोगे, मेरा नमस्कार मुझे नमस्कार किया तुमने, मेरा स्मरण तुमने किया, मेरी पूजा अर्चना तुमने की, मेरे तुम भक्त बने हो, तो फिर कहा और कहीं जाओगे नहीं, माम एव यशस्वी, और केवल माम यशस्वी भी कह सकते थे, लेकिन फिर आचार्यगण कहते माम एव, दोबारा एम्फसिस है, दोबारा जोर दिया केवल मुझे ही, माम एव, डबल एम्फसिस हुआ माम और फिर एव, मुझे ही तुम प्राप्त। देवान देव जयंति पितृयांति भूतेने भूतानि जयंति भूतेजा यांति मध्याजिनो भी माम, जो मुझे भजते हैं मुझे प्राप्त होंगे। देवताओं को कोई भजता पूछता है खंडोबा मसोबा भैरोबा जो भी उनके पास जाएंगे, लेकिन जो विठोबा को भजते हैं सबके बा को सबके बा का बा बाप सभी के बा ये बाघ उठोबा खंडोबा ज्योतिबा भैरोबा ये सब बा का बा कौन है उठोबा है, तो उनको कोई भजता है तो उन्हीं के पास आएगा। तमाम ही वैश्य सत्यम थे सत्यम थे भगवान सत्यम थे सत्य कहता हूँ सत्य और प्रतिज्ञानी प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ माम एवैश्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तो जीवात्मा भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान बहुत प्रेम करते जीव के ऊपर, भगवान का प्रेम है। वन में ट्रैफिक नहीं कि बस जीव भगवान से प्रेम करता है, जीव भगवान से प्रेम करता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, भगवान का प्रेम जीव में नहीं है या भगवान का ध्यान नहीं जीव की ओर नहीं, जीव भगवान का अधिक प्रेम हम में है, हमसे अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो अमर रहे मतलब क्या है, हमारे एक नेता नहीं रहे कुछ दिन पहले जिस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, तो आते समय हम देख रहे थे कई स्थानों पर उनके या बोर्ड लगे हैं स्मृति में, और कई जगह पर लिखा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हम भी कहेंगे भी अमर रहे, लेकिन लोग जिस प्रकार से सोचते हैं अमर रहे, और कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब तक ये चांद सितारे रहे तब तक अमर रहे, संजय गांधी भी जब नहीं रहे थे तब ऐसा प्रचार हो रहा था क्या, लेकिन वो भी कुछ अमर तो ज्यादा अमर तो नहीं, एक समय सूर्य भी नहीं रहेगा चंद्रमा भी नहीं रहेगा फिर अमरत्व समाप्त हुआ, और क्या है संसार का अमर होना, क्या क्या कीमत है अमर। लेकिन तुकाराम अमर हो गए, तुकाराम अमर रहे यार, हम कहे या ना कहेंगे वे तो अमर, भगवान को अमर बना ही देते हैं। भक्ताना मान वर्धना, तो भगवान ख्याति है तो अमर रहने की बात है, विख्यात होने की बात है, तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के समान में संवाद में अमरता का विख्यात कौन है, यह ख्याति किस बात की, ख्याति किसके लिए प्रसिद्धि होनी चाहिए, हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात वो ख्याति है, उस सुविख्यात हो गया, अदरवाइज संसार की ख्याति तो कुख्यात कुख्यात। वैसे मैं भगवान का आपका मानना चाहिए, केवल देशभक्त ही नहीं। या जो नेता भी है अगर वो भी भगवान के संदेश के अनुसार अपना कारोबार चलाते हैं, वे राजर्षि है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ऋषियों से ज्ञान उपदेश मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनका संग प्राप्त करके अगर राज कारोबार चलाते हैं तो वो कारोबार भी वैसे कि वो राम राम राज या कृष्ण राज चैतन्य राज, तो ऐसा करने वाले जो राजा है वे भी अमर रहेंगे। उनका या जिनका संबंध भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, भगवान के साथ नाम स्थापित हुआ तो अमर हो गए। जैसे राजा कुलशेखर है, और भी कई है राजा कुलशेखर। हम नासिक वाराणसी में थे, नासिक त्रिवेणी गोदावरी के तट पर थे, तो वहाँ एक राजा कुलशेखर, दक्षिण भारत के राजा कुलशेखर, वे वहाँ की गोदावरी के तट पर जो घटित घटना लीला रामायण की लीला को सुन रहे थे या पढ़ते पढ़ रहे थे या सुन रहे थे, तो शूर्पणखा आई और फिर उसका नाक तो काट दिए लक्ष्मण। नाक जहाँ गिर गया तो शहर का नाम हुआ नासिक, नासिका, नासिका किसका, नासिक नासिका किसकी, शूर्पणखा की नासिका से नाम हुआ नासिक। तो वो गई खर दूषण के पास गई और कहा देखो क्या हाल किया, किसने किया, तो वो और राम लक्ष्मण का नाम ली, तो हमला करने के लिए तैयार हुए, तो राम और लक्ष्मण भी तैयार हुए युद्ध के लिए। राम और लक्ष्मण जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और खर दूषण उनके 14,000 उनके और भी उनकी टीम मेंबर्स उनके राक्षस सेना थी, उसके संहार के लिए जब राम और लक्ष्मण तैयार हो रहे थे तो राजा कुलशेखर, दक्षिण भारत के राजा कुलशेखर जब ये प्रसंग का श्रवण या अध्ययन कर रहे थे तो ऐसे भावा आवेश में आ गए, उनको लगा कि अब राम युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आदेश देना शुरू कर, ए सैनिकों तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। दिवंडी क्या दिवंडी डिंडोरा कहो पीट रहे थे, सबको घोषणा पहुंचाई जाए तैयार हो जाओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उस आवेश में उनको लगा कि ये घटना अभी घट रही है, ये नहीं कि ये 10,00,000 साल पुरानी कथा है उसको मैं अभी सुन रहा हूं। तो उस लीला के श्रवण से ऐसे भाव और उस लीला के दर्शन उनको होने लगे मानो राम और लक्ष्मण अभी अभी युद्ध के लिए अभी अभी आज अभी मैं जो सुन रहा हूँ तो वो जा रहे, तो मैं राजा हूँ तो मुझे भी सहायता करनी चाहिए, राम की सेवा में मुझे भी सेना लेके जाना चाहिए। तो लोगों ने जब पूछा क्या हो क्या रहा हो क्या कहाँ कहाँ युद्ध के लिए कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो राजा कुलशेखर ने कहा, तो प्रजा ने कहा सैनिकों ने, वो तो युद्ध हो गया 10,00,000 साल पहले हो चुका, युद्ध हो चुका और आप जीत भी गए, आप थोड़े ठंडे हो जाइए विचार कीजिए। तो ऐसे राजा हो तो फिर ऐसे राजा भी तो मर ही जाएंगे एक दिन, मरना तो सभी को है, फिर अमर होते हैं। कब के हुए राजा कुलशेखर, वो अमर हो गए, आज उनका पंढरपुर में आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। किसी ने कहा होगा नहीं होगा, ये राजा अमर रहे अमर रहे अमर रहे, कुछ बोर्ड लगा होगा नहीं होगा, होर्डिंग लगा होगा या, लेकिन अमर तो राम के साथ ना घनिष्ठ का स्नेह प्रेम भक्ति, तो वो अमर होगा। जय श्री राम, जय मोहिनी मूर्ति। पांडुरंग मुझे कोई प्रश्न है या कमेंट्स? हाँ, ध्रुव महाराज तसेच गेले असं असा उल्लेख आहे। स्वदेहाने ध्रुव महाराजी विमानामध्ये बसले, या एक तुकाराम महाराज के विमान की चर्चा तो है ही, विमान में बैठ के, और भी कई अजामिल को भी विमान में बैठ के गए, तो सभी तो विमान में बैठ के, धुंधकारी भी विमान में बैठ के सात दिन की कथा सुनी। एक विमान आया था तो गोकर्ण जब कथा सुना रहे थे, तो कई बार विमान आए, भक्तों को बिठाया और ले गए, ऐसा वर्णन तो आता है। और समय भी विमान आते हैं, लेकिन उसका सभी के सभी को दिखते नहीं विमान, उसका कोई वर्णन नहीं होता, फिर उसका वीडियो फोटो खींचा नहीं जाता। लेकिन वैसे हर जब त्यक्तवाद हम पुनर्जन्म नहीं थी जो है, तो कोई विमान आता है भगवान के धाम से, विष्णु दूत आते हैं और उस भक्त को ले जाते हैं, औरों को यमदूत ले जाते हैं और भक्तों को विष्णुदूत लेके जाते हैं। तो हर भक्त को ले जाने के लिए भगवान के धाम से विमान आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा सामने दर्शन भी कराया है, जैसे तुकाराम महाराज के लीला में या ध्रुव महाराज के लीला में। तो तभी तो तुकाराम महाराज की समाधि नहीं है, सदेह गए, ज्ञानेश्वर की समाधि है कि कईयों की समाधि है, सदेह नहीं गए, गए लेकिन सदेह नहीं गए। तुकाराम महाराज सदेह गए, इसलिए उनकी समाधि नहीं है। तो वह हमारे समक्ष से तो हमारे सामने से तो, या कई लोगों ने जो वहाँ थे इंद्रायणी के तट पर, उन्होंने तो देखा, वे आई विटनेसेस थे, वे साक्षी थे, तो सभी के समक्ष तो सदेह गए। फिर जब आगे बढ़े तो फिर आगे क्या क्या हुआ उसका तो कोई वर्णन नहीं है। एक समय इस ब्रह्मांड का जो आवरण है, हम लोग इस तरबूजे में है, तरबूजा, या हम लोग फुटबॉल में है, तो बंद है सारा ब्रह्मांड बंद है, तो उसके उसके कई आवरण है, पृथ्वी का, फिर दूसरा जल का, फिर अग्नि का, फिर हवा का, ईथर का। उससे पार होने के बाद फिर विरजा नदी को भी पार करना होता है, और विरजा नदी को पार करने के बाद फिर भगवान का वैकुंठ धाम, एक तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति में अलग अलग वैकुंठ धाम है, वैकुंठ लोक है। तो रास्ते में क्या उनके शरीर जो पंच महाभूतों का बना हुआ उसको पीछे छोड़ दिए और तुकाराम महाराज की जो शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा है उसको ही एक समय उन्हीं को बिठा के वैकुंठ में प्रवेश किए कि सदेह देह के साथ वैकुंठ में प्रवेश। भगवान ही जाने, ऐसा तो कोई आगे कुछ उल्लेख नहीं है, कोई खुलासा का स्पष्टीकरण तो नहीं है। तो दोनों भी संभावनाएं हैं, शरीर के साथ वैकुंठ, आत्मा का भी, आत्मा का अपना रूप होता है, आत्मा का रूप होता है, आत्मा के हाथ, आत्मा के पैर, आत्मा का पेट, आत्मा का मुख, आत्मा का सब होता है। तो वैकुंठ में जो मुक्त जीव है वो रूप वाले होते हैं। तो हम सभी के भी जो आत्मा है अपना अपना आत्मा का रूप है। तो हम, आप जब मुक्त होंगे तो आप सदेह भी नहीं जाओगे, तो आपकी आत्मा जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका रूप है, उसका सौंदर्य है, तो उसके साथ जाएंगे। तो ये तो अचिंत्य हमारे चिंतन के परे का विषय है। अचिंत्या खलु ये भावा न तर्के न योजयत, कहा महाभारत में, कहा सावधान, ऐसी कोई अचिंत्य बातें हैं तो न योजय, तर्क, उसके तर्क वितर्क के परे की बातें हैं तो ज्यादा मत तर्क वितर्क। तो यहां से तो गए सदेह गए, ये तो ना तो स्पष्ट है। हाँ, जिंदगी भर नहीं, नहीं और कई जिंदगियों तक। आपने जप भी किया और फिर अपराध भी किए, अनर्थ भी रह गए, तो फिर कहा है कि जो कृष्ण प्रेम तो दूर ही रहेगा। बहु जन्म का चैतन्य चरितामृत में कहा है, तबे तो तबे ना पाए, ऐसा संभव है। और अनर्थ से मुक्त नहीं होंगे तो क्या है, छूट है फिर क्या। हाँ तो प्रयास, प्रयास करो तो प्रयत्न की परमेश्वर, प्रयास करना है। ऐसी पीएचडी सबको नहीं मिलती है, एक साधना सिद्धि और दूसरी कौन सी, कृपा सिद्धि, कृपा सिद्धि, साधना सिद्धि, तो सभी कृपा सिद्धि ही चाहते हैं। और नाम जप कैसा चल रहा है, नाम जप कैसा चल रहा है, राधा गोविंद महाराज बता, राधा गोविंद महाराज ने पूछा किसी से, हाँ कैसे चल रही है आध्यात्मिक प्रगति, कैसी हो रही है? उस व्यक्ति ने कहा गुरु कर लिया। आप समझ गए, अब गुरु करेगा, हमने गुरु कर लिया तो शायद वही करेगा सब कुछ, वही करेगा। गुरु आपके लिए जप करेगा, गुरु ने कहा है जप करो तो वो करना होगा, नहीं गुरु कर लिया, अब तो कृपा सिद्धि। ऑनरी डिग्री किसी किसी को मिलती है, लेकिन सभी हम ऑनरी डिग्री ही प्राप्त करेंगे, हम ये पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, एग्जाम नहीं लिखेंगे। या तो प्रयास, पूरा प्रयास करना चाहिए। अनर्थ तो शाश्वत नहीं है, अनर्थ टेम्पररी है, अशाश्वत है। मन में बस जाते हैं अलग अलग अनर्थ, मन में इसका संग्रह हो जाता है, तो माइंड चेंज भी तो होता है। कई जो बुरी आदतें हैं, तो हमारा जो चरित्र बना है कुछ बुरी आदतों से, आदत पड़ जाती है, ये गलत काम किया, ये अपराध किया, फिर पुनः किया वो अपराध, पुनः अपराध किया, फिर पुनः अपराध, वही अपराध किया, तो धीरे 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 हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस से फिर हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं, वो अनर्थ करने में इतने पटाइत या परायण हो जाते हैं, मानो हमारा बाएं हाथ का खेल हो जाता है बड़े आसानी से, या हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। लेकिन वो हम वैसे नहीं होते हैं, ये तो हमने धीरे धीरे उस गुण धर्मों को अपना लिया है, अपना बना लिया है, तो उनको धीरे धीरे हम लोग उसको ठुकरा भी सकते हैं, उसको बाहर लात मार के भगा भी सकते हैं, और माइंड को क्लियर कर सकते हैं इन सब अनर्थों से मुक्त। तो बहुत समय के अभ्यास से, प्रैक्टिस से हम लोग परफेक्ट हो गए हैं। तो कुछ विपरीत या भिन्न अभ्यास करना होगा, और वो नया अभ्यास में परफेक्ट होना होगा। प्रातःकाल में सोने का अभ्यास हो गया, सोने का प्रातःकाल में सोने का अभ्यास हुआ, तो फिर अचानक जगना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो फिर, पहले तो हम लोग जगते नहीं थे, जब आश्रम में आ गए या हरे कृष्ण वाले हो गए, ब्रह्म मुहूर्त का महात्मा समझे, तो उठते उठते कभी फिर उठते नहीं, कभी उठते जगते सोते, लेकिन अभ्यास करेंगे तो फिर हर रोज प्रातःकाल को जग जाएंगे। तो जो अनर्थ था प्रातःकाल में सोने का, जो अनर्थ था उसे मुक्त हो गए। इस प्रकार कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, इस अनर्थ से मुक्त हो गया मैं, इससे भी हो गया, उससे हो रहा हूं, उससे भी क्यों नहीं हो सकता मैं। तो यह अनर्थ तो सारे फॉरिन बातें हैं, ये तो सारे परदेशी है, पराये हैं, हमारे स्वरूप में उनको कोई स्थान नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है, स्वरूपेण व्यवस्थिति हित्वा अन्यथा रूपम हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो स्वरूप में वो अनर्थ नहीं है, उनको कोई स्थान नहीं है। तो जो जो स्वरूप के विपरीत है, अलावा है, एडिशनल जो हमारा अंग बना है, उसको तो हम ठुकरा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फिर आपके प्रयास भगवान देखेंगे तो सहायता भी होगी। जो कहा वो उत्साह होना चाहिए, निश्चय उत्साह निश्चयात, फिर धैर्यात भी, उत्साह है फिर निश्चय है, लेकिन फिर ऑन द स्पॉट तो नहीं होगा, फिर धैर्य भी तो चाहिए, मतलब टेक सम टाइम, ये भी समझ होनी चाहिए। फिर आपका जो निश्चय भगवान भी देखेंगे, आपने नोट तो किया, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है, ये मैं नहीं हूं, ये पराई बात है, ये अपराध है, ये इससे मुझे मुक्त होना है, इतना तो फिक्स है, इतना लक्ष्य हमने बनाया है। तो फिर पुनः हम लोग स्वीकार नहीं करने, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये अपराध है, ये पाप है, ये विघ्न है, ये इसका रटना भी होगा, स्वयं को स्मरण दिलाना होगा, उस प्रकार का मन बनाना होगा, निश्चय। फिर निश्चय जब होंगे तो फिर भगवान कई प्रकार की सहायता, कई प्रकार से सहायता करेंगे भगवान, क्योंकि भगवान में से जो तुम ही मुक्त नहीं होना चाहते हो, भगवान तुमको मुक्त देखना चाहते हैं, तो भगवान हमारे पक्ष में है, भगवान हमारे पक्ष में है, हमारे पार्टी में, हमारा समर्थन समर्थक है, और भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की सहायता लो, गुरुजनों की सहायता लो, आचार्यों की सहायता, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की सहायता, वैष्णव की सहायता लो। अपराध मत करो, सबसे अपराध तो वैष्णव अपराध है, साधु निंदा है, ये महा अपराध, तो सावधान। तो चिड़िया भी, चिड़िया सारे पानी समुद्र में जितना पानी है, अब समुद्र को मैं खाली कर दूंगी, रिक्त बनाऊंगी, और चोच में पानी लेके आती थी, कुछ बूंद फेंक देती थी और भूखंड जमीन पर ऐसा आना जाना चल रहा था, क्योंकि समुद्र ने कुछ अंडे ले लिए, अंडे, तो मुझे मेरे अंडे चाहिए, मुझे अंडे वापस चाहिए, तो कैसे मिलेंगे, कई समुद्र में कई पर है अंडे, इसके कई डूब गए, समुद्र नहीं दे रहा है, नहीं लौटा रहा, तो चिड़िया ने योजना बनाई, मैं अभी सारा पानी समुद्र को एम्प्टी खाली कर दूं, जब प्रयास में लगी है वो चिड़िया, लगी है, तो इसका समाचार गया भगवान के धाम में, उस प्रयास का समाचार भगवान के धाम में पहुंचा, तो फिर भगवान ए गरुड़ जाओ, चिड़िया भी पक्षी है, तुम भी पक्षी राज हो, तुम जाओ, कुछ क्या कर सकते हो देखो। तो फिर पक्षी राज आए और फिर डर से, डर के मारे समुद्र ने सारे अंडे लौटा दिए। हरी बहो, तो उसका डिटर्मिनेशन देखा, चिड़िया का प्रयास और उत्साह और निश्चय, धैर्य षडभीर भक्ति प्रसीदति का, इसे भक्ति बढ़ेगी उत्साह निश्चय धैर्य से।